डॉक्टर डोनाल्ड फाउलर, ओल्ड टेस्टामेंट बैकग्राउंड। व्याख्यान 19, इंपीरियल असीरिया। 2024 डॉन फाउलर और टेड हिल्डेब्रांट। यह पुराने नियम की पृष्ठभूमि पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डॉन फाउलर हैं। यह सत्र 19, इंपीरियल असीरिया है। भले ही हमारा साम्राज्य 300 वर्षों तक चला, हम अपनी टिप्पणियों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे पुराने नियम के पाठ पर प्रकाश डालते हैं। इसलिए हम उस प्राचीन इतिहास पर समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं जो हमें असीरियन राजाओं और प्रत्येक राजा की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताएगा। हम असीरियन इतिहास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं क्योंकि यह हिब्रू बाइबल के साथ इंटरफेस करता है। हम क्या करना चाहते हैं जब हम इस अवधारणा पर लौटते हैं जिसके साथ हमने शुरुआत की थी, जो कि असीरिया था। आपको यह इंगित करना है कि राजा आपके आसपास के सभी अन्य राष्ट्रों की तरह एक चेतावनी है जो भगवान ने उन्हें शमूएल के माध्यम से दी थी। इसका आदर्श उदाहरण राजा अहाब है। अहाब एक अंतर्राष्ट्रीयवादी था, वह एक भौतिकवादी था, वह एक सैन्यवादी था, और भगवान जानता है कि उसने निश्चित रूप से मोज़ेक कानून की प्रतियां नहीं बनाई। तो अहाब को राजा के रूप में योग्य बनाने की एकमात्र बात यह थी कि वह एक भाई था, वह इसराइली था। लेकिन वह स्वयं असफल था, और मुझे लगता है कि पाठ उन तीन लड़ाइयों पर जोर देता है जिनके बारे में मैंने आपको पिछले टेप में बताया था। यह कहना था कि अहाब का तरीका इतना प्रभावशाली था कि अहाब का परिवार अश्शूरियों का सबसे प्रभावशाली परिवार था, पूरे पश्चिम में था। उन्होंने अश्शूरियों पर जबरदस्त प्रभाव डाला, लेकिन असल बात यह है कि अहाब की नीतियां इस दुनिया के तरीके थीं और भगवान के पास अन्य तरीके थे जिनसे वह उनके साथ संबंध बनाना चाहता था। इसलिए अहाब की मृत्यु दर्शकों को यह समझाने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है, भले ही आप इसके बारे में कुछ न कहें, कि चूंकि अहाब ने रथ में खून बहाकर एक योद्धा की मौत मरने का फैसला किया, वास्तव में उसका वास्तविक मार्ग विफल था। और इसलिए मैंने यहाँ हमारे नोट्स में उल्लेख किया है कि शालमन एजेर को कई अभियानों की आवश्यकता होगी, लेकिन अंततः 841 में उन्होंने अंततः पश्चिमी दीवार को तोड़ दिया। तो पश्चिमी दीवार में पहले अरामी और फिर दूसरे यह गठबंधन शामिल था जिसे हमने देखा है, और इसलिए उसने लेबनान पर्वत के सामने दमिश्क के राजा हजाएल की सेना को हरा दिया, और लेबनान पर्वत संभवतः हरमन पर्वत था, और फिर बालेरासी पर्वत पर चढ़ गया और वहां पराजितों से कर प्राप्त किया, और वह संभवतः था माउंट कार्मेल। यहीं पर येहू श्रद्धांजलि अर्पित करने आया था, जिसका उल्लेख या चित्र ब्लैक ओबेलिस्क पर अंकित है। मैं इसका उल्लेख साधारण कारण से कर रहा हूं कि यह राजा येहू है, और जैसा कि आप देख सकते हैं वह शलमन एजेर 3 के सामने झुक रहा है, और आप शलमन एजेर को उसके किन्नरों के साथ देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे शाही साम्राज्य की समृद्धि में वे उसे धूप से बचाते हैं। आप इनमें से मांसपेशियों की तस्वीर में सैन्य ताकत देख सकते हैं, और फिर आप येहू को अपनी नाक जमीन पर टिकाए हुए अपनी अधीनता दिखाने के लिए शालमन एजेर के सामने जमीन को चूमते हुए देख सकते हैं। इस साधारण कारण से यह एक प्रभावशाली चित्र है। अहाब ने कभी भी अश्शूरियों के सामने घुटने नहीं टेके। वास्तव में जब अहाब की मृत्यु हुई तो वह अश्शूरियों से अपराजित होकर मर गया। येहू, तुम्हें याद होगा कि अहाब के वंश को नष्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार था। तुम्हें स्मरण है कि येहू ही वह व्यक्ति था जिसने इजेबेल की मृत्यु का कारण बना। वहां कार्मेल पर्वत पर येहू की नाक जमीन पर है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक ऐसी तस्वीर थी जिसका जानकार इसराइलियों पर प्रभाव पड़ा। अगर मैं इस तथ्य के 2000 या 3000 साल बाद आपसे कह सकता हूं, कि येहू की नीतियां वास्तव में काम नहीं करती, तो खुद को सच साबित करने के लिए इसमें हजारों साल का फायदा है। येहू एक उत्साही यहोवावादी था, अर्थात इसराइल के परमेश्वर का अनुयायी था और वह आज भी वही है। इसलिए जो लोग समसामयिक घटनाओं के माध्यम से ईश्वर की व्याख्या करते हैं, उनके लिए ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि अहाब का मार्ग काम करता था और येहू का मार्ग काम नहीं करता था। हमारे लिए यह जानना बहुत मुश्किल है कि अखबार के पहले पन्ने से भगवान क्या कर रहे हैं या सुबह की खबर देखते समय अपनी कुर्सी के नजरिए से उन्हें देखें। हम सिर्फ इंसान हैं और हम अपूर्ण व्याख्या करते हैं। इसलिए 841 के बाद इज़राइल का उत्तरी साम्राज्य टूट गया है और इसलिए शालमनेसर अपना ध्यान उत्तर की ओर केंद्रित करने में सक्षम है और यहाँ वह अपना ध्यान उरारतू की ओर केंद्रित करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर हरा भरा क्षेत्र उरारतू राज्य है और जैसा कि आप बता सकते हैं, यह असीरिया की उत्तरी सीमा पर ठीक बैठता है। इस वजह से यह एक संवेदनशील क्षेत्र है जिसे असीरियन कम करना और जीतना चाहते हैं। इसलिए उसने अपना ध्यान उत्तर की ओर उरारतू की ओर लगाया और निस्संदेह यह एक प्रमुख शक्ति थी। उरारतू इस समय अश्शूरियों का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी रहा होगा और इसलिए जब आप मेरे द्वारा आपको दिए गए आंकड़ों को देखेंगे तो आप देख सकते हैं, जब 828 में केवल एक अभियान के बाद उसने कब्जा करने का दावा किया था, 110,000 गुलाम और 82,000 मारे गए। ये बड़ी संख्याएं हमें याद दिलाती हैं कि असीरियन साम्राज्य किस हद तक पहुंच गया है कि यह ऐसा युद्ध है जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका दावा है कि उसने 185,000 भेड़ों को पकड़ लिया है, लेकिन उसने जो नहीं किया वह उरारतू को पूरी तरह से हरा देना था। 828 तक ऐसा प्रतीत होता था कि संपूर्ण प्राचीन विश्व पतन के लिए तैयार था, लेकिन शालमनेसर की मृत्यु हो गई। अखबार के पहले पन्ने को पढ़ने के लिए इतना ही। 828 में मरने से पहले शालमनेसर ने उरारतू को एक भयानक झटका दिया था और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कागजात होंगे। मैं सिर्फ CNN या फॉक्स या किसी को हमें असीरिया के भयानक उदय के बारे में बता रहा हूँ और वे रो रहे होंगे, चिकन लिटिल, आसमान गिर रहा है, तुम्हें पता है, शेयर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, और फिर शालमनेसर मर जाता है। और जब शालमनेसर की मृत्यु हो जाएगी तब यह पता चलेगा कि एक बड़ा विद्रोह होगा जो असीरिया को नाटकीय रूप से कमजोर कर देगा। 827 से 823 तक के इस महान विद्रोह ने असीरिया को डेढ़ पीढ़ी तक पंगो बना दिया। जब तक शमशादाद वी ने अपने लिए सिंहासन सुरक्षित नहीं कर लिया, तब तक इसमें बदलाव नहीं किया गया। जाहिर तौर पर असीरिया कमजोर हो गया, इसने स्पष्ट रूप से असीरिया को कमजोर कर दिया। 745 में टाइग्लैथपाइलसर III के समय तक वह गिरावट को उलटने में कामयाब नहीं हुआ था। तो यदि आप अपने आंकड़ों को देखें तो 823 से 745 60 वर्ष तक असीरिया सो रहा है। यह निष्क्रिय है, कुछ अभियान चलाता है और वास्तव में किसी के लिए कोई गंभीर खतरा नहीं है। एक बार फिर यदि हम अपने धर्मशास्त्र को समकालीन घटनाओं से लेते हैं तो मैं आसपास के पड़ोसियों के प्राचीन टेलीविजन पर उपदेशकों को दुनिया को यह कहते हुए सुन सकता हूं कि भगवान ने उन्हें असीरिया से बचाया है। मैं किताबें देख सकता हूं, मैं लेख देख सकता हूं, मैं समाचार टिप्पणीकारों को सुन सकता हूं। आप जिस भी देश से हैं वहां के ईश्वर या देवताओं ने असीरिया को नष्ट कर दिया है और यह वैसा ही दिखता था, लेकिन यह वैसा नहीं था। तो कल्पना करने के लिए यदि आप चाहें तो मेरे साथ इस तरह कल्पना करें, 60 वर्षों तक वस्तुतः कुछ भी नहीं है और फिर 745 घटित होता है। 745 कहीं से भी टिग्लाथपाइलसर III नाम के एक असीरियन राजा को सामने लाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह संपूर्ण असीरियन काल का सबसे महान सैन्य योद्धा था। टाइग्लैथपाइलसर एक बवंडर की तरह घटनास्थल पर फूटता है जिसे आपने आते हुए नहीं सुना। और 20 साल बाद तिग्लात-पाइलसर ने लगभग पूरे पश्चिम पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए शमशीदाद को अपने भाई का समर्थन करने वाले 29 विद्रोही शहरों से निपटना पड़ा। इसलिए सत्ता को लेकर एक बड़ा गृह युद्ध लड़ा गया। विद्रोही स्पष्ट रूप से कुलीनों की कीमत पर राजा की शक्ति को मजबूत करना चाहते थे। शल्मनेसर ने अपने सबसे बड़े बेटे का समर्थन करने से इनकार कर दिया, जिसे विद्रोहियों का समर्थन प्राप्त था, और इसलिए हमारे पास गृहयुद्ध है। शमशीदाद जीत गया, लेकिन आंतरिक तनाव का समाधान नहीं हुआ, और वास्तव में 60 साल बाद तक इनका समाधान तिग्लात-पाइलसर III के सामने नहीं हुआ। टेप को सुनने वाले हम में से लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कालानुक्रमिक नोट बनाया जा सकता है, और वह यह है। मैंने जिस 60 साल की निष्क्रियता की अवधि का वर्णन किया है, वह 60 साल की अवधि है जो भविष्यवक्ताओं अमोस, मीका और शायद योना के मंत्रालयों को कवर करती है। उनके लेखन मंत्रालय ठीक इसी असीरियन कमजोरी के दौरान हुए और उत्तरी साम्राज्य द्वारा उनके संदेशों को अस्वीकार करने की व्याख्या की जा सकती है। तो आइए इस बात का ध्यान रखें, हमारे पास 60 वर्षों की सुप्तावस्था है जिसमें अमोस जैसे भविष्यवक्ता आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम सब बंधुवाई में जा रहे हो। खैर, यह तथ्य औसत श्रोता को ज्ञात नहीं है कि जिस समय अमोस ने उस संदेश का प्रचार किया था, किसी ने भी पूरे लोगों को बंदी नहीं बनाया था। इसका आविष्कार टाइग्लैथ-पाइलसर III ने किया था। इसलिए आमोस का संदेश स्पष्ट रूप से बहरे कानों पर पड़ता है, लेकिन जब आमोस और मीका जैसे भविष्यवक्ता न्याय की भविष्यवाणी करने और इसलिए पश्चाताप करने के लिए आए, तो वे संदेश निष्क्रियता के ठीक बीच में घटित हुए। मैं अपने दक्षिणी राज्य में मंचों की आवाज सुन सकता हूँ। भगवान ने अपने लोगों को बचाया है। यह वर्तमान स्थिति की दुखद व्याख्या है। वास्तव में भगवान शायद अपने लोगों को पश्चाताप करने के लिए एक अनुग्रह अवधि दे रहे थे, जिसके बाद भगवान उत्तरी राज्य पर फैसला सुनाएंगे। यह इस समय अवधि के दौरान भी था कि हमारे पास मुआबी स्टेला की एक कहानी है, और जैसे ही अहाब अपनी मृत्यु के करीब आ रहा था, मेशा जो मुआब का राजा था, मुआब सीधे तौर पर है। शायद मुझे इसे फोन करके आपको दिखाना चाहिए ताकि अगर हम इस मानचित्र को देखें तो निश्चित रूप से यहाँ मृत सागर है और मुआब वह क्षेत्र है जो यहीं होगा। गलील और मृत सागर के बीच में मुआब का क्षेत्र है और इसलिए राजा मुआब जो दासत्व में था ने उत्तरी राज्य के प्रभुत्व से मुक्त होने के लिए राजनीतिक कमजोरी के समय का उपयोग किया। इसलिए जब वह सफल हुआ तो उसने जश्न मनाने के लिए इस स्टेला की रचना की। वह विजय जो उसने घृणास्पद इसराइली राजा की शक्ति से मुक्त होकर हासिल की थी, जबकि यहोराम ने उन्हें युद्ध में हरा दिया, लेकिन उन्हें वश में करना असंभव था, इसलिए मुआबी पत्थर सफल विद्रोह की याद दिलाता है। अब इसका कारण, मुझे लगता है कि कई कारण हैं कि यह आपके सामने एक उपयोगी तस्वीर क्यों है, क्योंकि यदि आप लिपि को ध्यान से देख सकें तो आपके पास एक तस्वीर होगी कि हिब्रू भाषा 8वीं शताब्दी में कैसी दिखती थी। ईसा पूर्व यह उस हिब्रू की तरह नहीं दिखता जिसके बारे में आप आज हिब्रू बाइबल देखते समय जानते होंगे। यह बहुत अधिक संक्षिप्त है, लेकिन यह मोआबाइट में लिखा गया है जो हिब्रू के बहुत करीब की भाषा है, और यह हमारे पास एकमात्र मोआबाइट शिलालेख है जिसका कोई परिणाम है। इसलिए लिपि पर ध्यान दें। यह उस प्रकार की लिपि है जिससे 8वीं शताब्दी के समय में हिब्रू भाषा बनी होगी। आप यहाँ इस अनुभाग को भी देख सकते हैं जो अंधेरा और कुछ हद तक क्षतिग्रस्त दिखता है। यह दस्तावेज लगभग एक सदी पहले तक प्राचीनता में जीवित रहा। एक सदी पहले ऑगस्टस क्लेन नाम के एक मिशनरी को यह टैबलेट मिला और उसने इसका अध्ययन करना शुरू किया, और निश्चित रूप से इसके लिए उन्नत पुरातत्व में कोई डिग्री नहीं ली गई, भले ही यह 1868 में अस्तित्व में नहीं थी। पुरातत्व को यह जानने के लिए कि उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज मिली है और इसलिए उसने इसकी प्रतियां बनाना शुरू कर दिया ताकि वह इसे संरक्षित कर सके और फिर निश्चित रूप से इसका अनुवाद कर सके। और इस प्रकार वह दस्तावेज जो हमारे सामने है, जो हजारों वर्षों से जीवित है। ऑगस्टस क्लेन की समकालीन दुनिया से बच नहीं सके जब क्षेत्र के ग्रामीणों ने देखा कि यह मिशनरी इस पर इतना ध्यान दे रहा है, तो उन्होंने मान लिया कि इसके अंदर सोना होगा। इसलिए उन्होंने सोने तक पहुंचने के लिए मोआबाइट स्टेला को तोड़ दिया और निश्चित रूप से वहां कोई सोना नहीं था, लेकिन इसे फिर से इकट्ठा किया गया था और इस प्रकार हमारे पास मोआबी भाषा में लिखा गया यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेला है जो इसराइल के राजाओं के खिलाफ मोआब के राजा मेशा की मुक्ति के विजय युद्ध का जश्न मनाता है। तो युद्ध भयानक था। जब आप इसे पढ़ते हैं तो यह बहुत मददगार होता है क्योंकि यह आपको युद्ध के इस समय में हुए भयावह सैन्य माहौल की एक तस्वीर देता है। तो किसी भी दर पर हम उन 60 वर्षों को टाइग्लाथपिलेसर 3 की समय अवधि में पूरा होने के बाद बहस करेंगे। वह शाही खानदान का नहीं था और वह एक सेनापति था। विनाश के काले बादल इतनी तेजी से बने कि किसी को भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, और इसलिए जब बादल फटे तो भारी बारिश हुई जिससे असीरियन साम्राज्य के पूरे पश्चिमी हिस्से में बाढ़ आ गई। पिछले राजवंश से उनका संबंध अस्पष्ट है। बाइबल में टिग्लथपिलेसर के कई नाम हैं। उसे पॉल कहा जाता है, उसे पिलेसर भी कहा जाता है, और एक इतिहास 5:26 में उसे पुलेन टिग्लथपिलेसर कहा जाता है। पाइलसर संभवत उनके नाम की गलत वर्तनी है। तो सभी राजाओं में से यह सबसे महान राजा सैन्य रूप से इतना सफल था जितना पहले कुछ ही थे। वह सबसे पहले दक्षिण में बेबीलोन में असीरियन प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसने उत्तर में प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया जो उरार्तु था। जब उसने अपने दक्षिणी और फिर उत्तरी किनारों को कवर कर लिया तो उसने पश्चिम की ओर आने का फैसला किया। कल्पना करने का प्रयास करें कि अश्शूरियों को पश्चिम में प्रकट हुए 60 वर्ष हो गए हैं। उन्हें लगा कि यह सब बीत गया। उन्होंने सोचा कि अश्शूर सिर्फ एक बुरा सपना था और वे इससे जाग गए थे और यह खत्म हो गया था। लेकिन नहीं, यह कोई बुरा सपना नहीं था और इसे जारी रहना था। इसलिए वह लंबे समय से स्वतंत्र पश्चिमी सहायक नदियों को फिर से अपने अधीन करने के लिए पश्चिम की ओर चला गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका पहला प्रतिद्वंद्वी अर्पाड़ के मतीलू के नेतृत्व में नवहित्तियों और अरामियों का गठबंधन था। प्रसिद्ध सेफायर शिलालेख देखें जहां मतीलू की संधि में अभिशाप सूत्र यशायाह 34 और सफन्याह 2 से उल्लेखनीय समानता रखता है। ये शक्तियां स्पष्ट रूप से उरार्टियन राजा सरदू 3 के अधीन थीं। जब सरदू ने तिग्लथपिलेसर को रोकने की कोशिश की तो वे युद्ध में भिड़ गए और सरदू बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे। इसलिए अगले वर्षों में पूरे उत्तरी सीरिया और फेनिशिया को उसके नियंत्रण में लाया गया। 743 तक केवल 2 वर्षों में तिग्लथपिलेसर ने इसराइल तक प्रवेश कर लिया था, जहां उसे इसराइल के राजा मेनाकेम से कर प्राप्त हुआ था, और यह भेंट बहुत बड़ी थी, 1000 किक्कार चांदी। 1000 किक्कार चांदी कोई अभूतपूर्व राशि नहीं है, लेकिन उत्तरी साम्राज्य जैसे छोटे देश के लिए यह आर्थिक रूप से बहुत बोझिल रहा होगा। तो पूरी संभावना है कि यही कारण बताता है कि मेनाकेम इतना अलोकप्रिय क्यों था। 2 साल बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। यह संभवतः उत्तरी राज्य के प्रति समर्पित होने की उनकी इच्छा के कारण उनकी अलोकप्रियता का परिणाम था। आखिरकार यदि आप अपने आप को उनकी जगह पर रखें तो मैं अखबार के पहले पन्ने को पढ़ते हुए सुन सकता हूं कि मेनाकेम जैसी बातें कह रहे हैं, भगवान ने हमें उससे पहले ही बचा लिया है। उसने उसे करकर में हराया उसने उसे 849 और 848 और 845 और 841 में हराया। अब भगवान पर भरोसा रखें और वह हमें बचाएगा। खैर, इसके बजाय उन्होंने बस उसकी हत्या कर दी और पेक्का, जिसने उसका अनुसरण किया, ने दमिश्क के राजा रेजिन के साथ गठबंधन बनाकर एक मजबूत अश्शूर विरोधी नीति अपनाई। तो आइए यहाँ अपने मानचित्र को अरामियों के विरुद्ध इंगित करें। ऐसा लगता है जैसे मैं इससे पहले भी गुजर चुका हूँ। तो दमिश्क के अरामी यहाँ हैं। यहाँ दमिश्क है, इसलिए यहाँ अरामी लोग होंगे, और इसलिए अराम और इज़राइल ने, जैसा कि उन्होंने अहाब के समय में किया था, उन्होंने अश्शूरियों का विरोध करने के लिए एक गठबंधन बनाया। इसलिए पेक्का और रजान ने यहूदा के राजा आहाज को विद्रोह में शामिल होने के लिए मजबूर करने के बारे में सोचा, लेकिन उसने तिग्लात-लेसर से मदद की अपील की और आहाज ने मदद की, एक अनुरोध जिसका उत्तर बहुत जल्दी दिया गया। इसलिए हमारे लिए मंच तैयार करने के लिए याद रखें कि आहाज यहूदा का राजा था। यशायाह ने उसे चेतावनी दी थी, इस गठबंधन की बात मत सुनो, लेकिन आहाज ने आगे बढ़कर अपील की, यह आपके पड़ोसी के हिंसक पिटबुल को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करने जैसा है, आपके मुख्य पाठ्यक्रम बनने की संभावना है। इसलिए 734 में तिग्लात-पिलेसर पश्चिम में आया और विद्रोह के लिए मिस्र की संभावित सहायता को रोकने के लिए तट के साथ दक्षिण की ओर चला गया। फिर 733 में उसने इज़राइल पर आक्रमण किया और गलील के अधिकांश भाग को, जो उत्तर में है, तबाह कर दिया और कई इज़राइलियों को निर्वासित कर दिया। अंततः वह वास्तविक शक्ति, जो दमिश्क थी, के विरुद्ध चला गया। अधिकांश ग्रामीण इलाकों को तबाह करने के बाद उसने दमिश्क शहर पर कब्जा कर लिया, रजान को राजा के रूप में मार डाला और अधिकांश आबादी को निर्वासन में भेज दिया। उत्तरी राज्य में होशे ने पेकह की हत्या कर दी थी, जिससे उसे इज़राइल के नए राजा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन निश्चित रूप से उत्तरी राज्य आकार में बहुत छोटा था। ऐसा लगता है मानो जब मैं इसे घटित होते हुए देखता हूँ तो मुझे यह महसूस होता है जैसे मैं किसी ऐसे व्यक्ति की हारी हुई लड़ाई देख रहा हूँ जो अस्पताल के बिस्तर पर कैंसर से धीरे धीरे मर रहा है। पीड़ित और भी कमजोर होता जाता है। उत्तरी साम्राज्य छोटा और छोटा होता जाता है। तो किसी भी दर पर होशे अगला राजा है और 731 से 729 के वर्षों के दौरान तिग्लात-पिलेसर ने एक अरामी आक्रमणकारी को हराकर बेबीलोन के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। जब 727 में उनकी मृत्यु हुई तो उनके देश की सीमाएं उनकी तुलना में कहीं अधिक बड़ी थीं। इसलिए अगर हम तिग्लात-पिलेसर के अतिरिक्त को देखें तो वे हल्के हरे रंग में हैं, लेकिन वे वास्तव में उससे भी बड़े हैं। मुझे लगता है कि यह जो दिखाता है उससे कहीं अधिक बड़ा है। तो जैसा कि आप बता सकते हैं, हल्के हरे रंग का मतलब उरार्तू का क्षेत्र है। तिग्लात-पिलेसर ने लगभग सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उत्तर में उरार्तू के महान साम्राज्य को समाप्त कर दिया। तब आप देख सकते हैं कि उसने पूरे दक्षिण में अपना रास्ता जीत लिया। उसने दमिश्क को नष्ट कर दिया और असल में मैं जोड़ सकता हूँ, उसने उत्तरी साम्राज्य को भी नियंत्रण में ले लिया, ताकि वास्तव में हमें इस मानचित्र के सुझाव से भी अधिक दक्षिण में हरित क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता होगी। तो तिग्लात-पिलेसर सभी असीरियन राजाओं में, यदि महान नहीं तो सबसे महान में से एक था। उत्तर में बेचारे छोटे इज़राइल के पास ऐसे मोनोलिथ के खिलाफ कोई मौका नहीं है, लेकिन अगर मैं उसकी मृत्यु के बाद उत्तरी राज्य में उपदेश देने वाले मंचों को सुन सकता हूँ तो यह भगवान उन्हें बचाने के लिए काम कर रहा होगा। ठीक है, आइए एक नज़र डालते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो आइए तिग्लात-पिलेसर के आविष्कारों पर एक नज़र डालें, क्योंकि तिग्लात-पिलेसर सिर्फ एक महान राजा नहीं थे, बल्कि तिग्लात-पिलेसर एक साम्राज्य चलाने में भी प्रतिभाशाली थे और इसलिए मैं उनके नवाचारों पर एक नज़र डालने जा रहा हूँ, और इसलिए मेरे पास उनमें से 6 हैं, प्रशासनिक और सैन्य। आप देखिए, टिग्लथ-पिलेसर एक सैन्य प्रतिभावान व्यक्ति था। उन्होंने ऐसी लड़ाइयां लड़ी जो बहुत उपयोगी रहीं। वह कभी पराजित हुए बिना ही मर गया। उसने अपने विरोधियों के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की सीमाओं को सुरक्षित कर लिया। वह एक महान राजा थे, लेकिन सैन्य उपलब्धियों के साथ समस्या यह है कि वे केवल थोड़े समय के लिए ही अच्छी होती हैं। टिग्लथ-पिलेसर ने जिस प्रकार की कल्पना की थी, वह ऐसे नवाचारों की थी जो यह गारंटी देते थे कि असीरियन साम्राज्य अभी भी लंबे समय तक चलने वाला है। तो आइए, मैं आपको उनके नवाचारों के बारे में सुनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उनका पहला आविष्कार जो उन्होंने किया, वह यह था कि उन्होंने जिलों को कई गुना बढ़ा दिया, या शायद हम उन्हें नाम देंगे ताकि आप राज्यों को समझ सकें। असीरिया को एक ऐसे देश के रूप में सोचने का प्रयास करें जिसके अलग अलग राज्य थे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में कुछ राज्य इतने शक्तिशाली हैं कि वे अपने आप में देश बन सकते हैं। कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया टूटा हुआ है, लेकिन कम से कम यह एक बड़ा टूटा हुआ देश है। खैर, अश्शूर में इन राज्यों में शक्तिशाली राज्य थे और वे राजा के लिए खतरा थे। तो टिग्लथ-पिलेसर ने कुछ ऐसा किया जो वास्तव में मेरे विचार से यदि प्रतिभा का एक नमूना नहीं तो काफी नवीन था। उसने राज्यों की संख्या कई गुना बढ़ा दी। दूसरे शब्दों में, उन्होंने कैलिफोर्निया जैसे देश को 4 या 5 छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया और इस तरह ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सिंहासन की शक्ति को कम खतरा होगा। दूसरे गृहयुद्ध की वास्तविक शक्ति कुलीनों, आइए हम उन्हें राज्यों के राज्यपाल कहें, के बीच संघर्ष था। राज्य के राज्यपालों और राजा के बीच संघर्ष था क्योंकि ये अमीर अधिक शक्ति चाहते थे। वे चाहते थे कि राजा के पास कम शक्ति हो। गृहयुद्ध इसी बारे में था। तो टिग्लथ-पिलेसर ने जो किया, वह वास्तव में अधिक कुलीनों का निर्माण करके कुलीनों के शक्ति आधार पर हमला करना था। यदि अधिक कुलीन होते तो उनके पास कम शक्ति होती और इसलिए वे अश्शूरियों के लिए कम खतरा होते, जो उनकी ओर से एक बहुत ही उज्ज्वल कदम होगा। खैर, टिग्लथ-पिलेसर का तीसरा आविष्कार इस साम्राज्य के आकार का परिणाम है। दोस्तों, जब हम इस साम्राज्य के आकार को देखते हैं तो मैं आपको तुलना के कुछ बिंदु देने का प्रयास करता हूँ। यदि आप इसे देख सकें तो यह यहाँ से यहाँ तक लगभग 300 मील है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी जब आप टिग्लथ-पिलेसर की सीमाओं के चारों ओर चलना शुरू करते हैं तो उसे चलने में कई हजार मील का समय लगता होगा। तो इसका मतलब यह है कि व्यवहार में किसी ऐसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने में जिसके बारे में सुना जाना था, सप्ताह लग गए होंगे। यदि इस राज्य की विशाल सीमा में कहीं किसी ने विद्रोह किया तो राजा को कुछ हफ्ते से पहले इसके बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने जो किया वह बहुत ही महत्वपूर्ण था, भले ही बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना हो। उन्होंने जो किया वह यह कि जिसे हम इस देश में पोनी एक्सप्रेस कहते हैं, उसके समतुल्य बनाया। दूसरे शब्दों में, पूरे राज्य में उसने प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए जहां राजा के सेवकों द्वारा संचालित घोड़ों का एक अस्तबल था, और इसलिए जब समाचार प्रसारित करने की आवश्यकता होती थी तो वह एक अस्तबल से दूसरे अस्तबल तक एक तेज घोड़ा भेज सकता था, और इस समय जितनी जल्दी संभव हो सके वह सुन सकता था कि पूरे राज्य में क्या हो रहा था। यह शक्तिशाली रूप से प्रभावी था क्योंकि इसका मतलब यह था कि जिन लोगों ने अश्शूरियों के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की थी, उनके पास नीनवे जैसे शहरों में खबर वापस आने से पहले इसे खत्म करने के लिए केवल कुछ दिन थे। तो यह उनकी ओर से एक शानदार कदम था। अब मैं उसका हिस्सा कहता हूँ, हम नहीं जानते कि यह किसने सोचा, चाहे वह सरडू ने टिग्लैथपिलेसर को रोकने की कोशिश की हो या किसी तेज सलाहकार ने, लेकिन अगर सरडू ने टिग्लैथपिलेसर को रोकने की कोशिश की तो उसने इस अवधारणा का आविष्कार नहीं किया था। उसके पास यह था, यह देखना अच्छी बात है कि यह अवधारणा आवश्यक थी। इसलिए उन्होंने पोनी एक्सप्रेस प्रणाली की स्थापना की। उनका अंतिम प्रशासनिक सुधार यह था कि उन्होंने विजित प्रदेशों को सीधे असीरियन साम्राज्य में मिला लिया। अब यदि आप यह पढ़ना चाहते हैं कि इन सुधारों के तहत इसे जोड़ने का क्या मतलब है, तो मेरे पास स्थितियों की एक सूची है जो बताती है कि इसे जोड़ने का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि जिस शक्ति पर विजय प्राप्त की गई, उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी। इसे एक प्रकार की सरकार की अनुमति दी गई थी जो एक कठपुतली सरकार थी। वास्तव में जब आप स्थितियों को पढ़ते हैं तो वे विजित और घेरेबंद क्षेत्र बन चुके थे और वास्तव में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। इसलिए उन्होंने इन सभी चीजों का उपयोग यह बताने के लिए किया कि संलग्न होने का क्या मतलब है। और इसलिए इसका मतलब यह है कि जो एक स्वतंत्र राज्य था वह मूल रूप से दुश्मन सैनिकों द्वारा घेर लिया गया राज्य बन गया। दुश्मन राजनीतिक हस्तियों द्वारा शासित केवल एक कठपुतली सरकार के साथ। इससे यह भी गारंटी हुई कि असीरियन राज्य के विरुद्ध विद्रोह करना बहुत कठिन होगा। ऊपर वापस जाने पर हम देख सकते हैं कि मैंने दो सैन्य नवाचारों को अलग रखा है। ये प्रशासनिक लोगों की तुलना में अधिक शानदार हैं। मैं वास्तव में अनिश्चित हूं कि वे कम या ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। टिग्लैथपिलेसर ने जो किया वह निर्वासन की अवधारणा को नया रूप देना था। असीरियन एक सदी से भी अधिक समय से लगातार विद्रोहों से त्रस्त थे और टिग्लैथपिलेसर साम्राज्यों का इतिहास जानता था। उनके पास कई विद्वान थे जिन्होंने उन्हें शिक्षित किया और बताया कि इसने पूरे इतिहास में कैसे काम किया है। और उसने जो देखा वह यह था कि उन सभी साम्राज्यों के लिए जिनके बारे में वे ऐतिहासिक रूप से बात कर सकते थे, उसने जो देखा था वह यह था कि साम्राज्य का मतलब वस्तुतः साम्राज्य के पूरे इतिहास के लिए एक के बाद एक विद्रोह था। खैर, टिग्लैथपिलेसर को स्पष्ट रूप से उसके सलाहकारों ने सलाह दी थी कि विद्रोह का असली कारण लोगों का अपनी मातृभूमि से जुड़ाव था। आखिरकार धार्मिक रूप से उन्होंने सोचा कि उनकी मातृभूमि वही है जहां उनके भगवान रहते थे, और निश्चित रूप से यह वह जगह है जहां उनके परिवार रहते थे। इसलिए टिग्लैथपिलेसर को किसी ने सलाह दी थी या फिर उसने खुद देखा था कि लगातार विद्रोह की समस्या से निपटने का एक अच्छा तरीका पूरी आबादी को निर्वासित करना है। जब टिग्लैथपिलेसर के शासन से धुआं निकला तो उसके आंकड़ों के अनुसार उसने 400,000 से अधिक लोगों को उनकी मातृभूमि से निर्वासित कर दिया था। इसका विद्रोहों को दबाने में एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब आप अपने मित्रों, गठबंधनों और परिचितों के घरेलू नेटवर्क के बिना किसी विदेशी भूमि में थे तो विद्रोह करना बेहद कठिन हो गया था। तो यह वस्तुतः प्रतिभा का एक नमूना था। संपूर्ण आबादी को निर्वासित करके वह पकड़े गए लोगों के लिए विद्रोह करना बहुत कठिन बना सकता था। 400,000। हम जो जानते हैं वह यह है कि सन्हेरीब, जो अभी आने वाला राजा है, किसी भी अन्य की तुलना में अधिक लोगों को निर्वासित करेगा। सन्हेरीब ने नीति अपनाई। उसने 500,000 लोगों को उनकी मातृभूमि से निर्वासित कर दिया। बुसेनाई ओडैड ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने सभी आंकड़ों पर नजर रखी है। उन्होंने जो पाया है वह यह है कि लगभग 100 साल पहले टिग्लैथपिलेसर से लेकर असीरियन साम्राज्य के पतन तक की अवधि के दौरान असीरियन ने 450,000 लोगों को निर्वासित किया था। असीरियन साम्राज्य के इतने लंबे समय तक टिके रहने का एक कारण, इस बात के बावजूद कि उनसे कितनी नफरत की जाती थी, निर्वासन की यह नीति थी। इसने सचमुच विजित लोगों के लिए विद्रोह करना असंभव से अगली चीज बना दिया। यह हमें उनके अंतिम सैन्य सुधारों और उनके अंतिम नवाचारों तक ले जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मानचित्र पर वापस आने के लिए यदि हम मानचित्र को देख रहे हैं तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि असीरियन शायद कई मिलियन लोगों पर शासन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने कभी कोई आंकड़ा सुना है कि असीरियन साम्राज्य में कितने लोग रहे होंगे, लेकिन शायद कई मिलियन। खैर, असीरिया अपने आप में एक अपेक्षाकृत, और मैं कहता हूँ सापेक्ष अपेक्षाकृत छोटा क्षेत्र है। यह इसराइल से बहुत बड़ा है, लेकिन अपेक्षाकृत छोटा क्षेत्र है। तो इसे इस तरह से कहें तो इतने असीरियन ही नहीं हैं कि वे उस सेना को तैनात कर सकें जो इस विशाल क्षेत्र पर शासन करने के लिए आवश्यक थी। तो उसने जो सीखा वह कुछ ऐसा है जिसे बाद के सभी साम्राज्यों को नकल करना होगा। जब आप ऐसे लोगों पर शासन कर रहे हैं जिनकी संख्या आपके राज्य से बहुत अधिक है, तो आपको अपनी सेना बनानी होगी, और इसमें आपके साम्राज्य के विजित लोग शामिल होंगे। तो तिग्लात-पिलेसर ने जो किया वह इतनी प्रतिभा का एक नमूना था कि अब असीरियन साम्राज्य की सेना बड़े पैमाने पर विजित क्षेत्रों से विजित सैनिकों से बनी होगी। लगभग निश्चित रूप से अश्शूरियों द्वारा अधिकारी बनाया गया था, लेकिन सामान्य असीरियन सैनिक अब असीरियन नहीं रहा होगा। और कई बार कक्षा में इस स्तर पर एक छात्र मुझसे पूछता है, यह कैसे काम करता है? क्योंकि आप सोचेंगे कि यह खतरनाक होगा, तुम्हें लगता होगा कि विद्रोह होगा, लेकिन वास्तव में अगर इन विदेशी सैनिकों का विद्रोह होने वाला है तो वे कहां जाएंगे? उनके पास जाने के लिए कोई मातृभूमि नहीं है, उनके पास तख्तापलट करने का कोई रास्ता नहीं है। तो असल में जब तक वे विदेशियों द्वारा अधिकारी नहीं थे तब तक यह वास्तव में कोई बड़ा खतरा नहीं था। और हम इतिहास से जानते हैं, कि रोमनों ने स्पेनिश सैनिकों के साथ अपने साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। अब निःसंदेह यह अतिशयोक्ति है, लेकिन इसका उद्देश्य आपको यह दिखाना है कि वास्तव में आप अन्य क्षेत्रों के सैनिकों को राज्य की ओर से लड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसकी शुरुआत तिग्लात-पिलेसर III से हुई। यह अगली शताब्दी तक चलता रहा और इसने काम किया। आप जानते हैं, आप भूल सकते हैं क्योंकि आप आम तौर पर बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन स्वयं डेविड, इसराइल के महान राजा डेविड की सेना में विदेशी सैनिक थे। उनके निजी अंगरक्षक में कैरिथाइट्स शामिल थे, जो एजियंस के लिए एक और शब्द है। डेविड का अपना निजी सैन्य अंगरक्षक था, यानी सैनिकों का वह समूह जो डेविड के साम्राज्य के सबसे संवेदनशील हिस्से की रक्षा करता था, उनका महल विदेशी सैनिकों एजियंस से बना था। दाऊद की सेना में भाड़े के सैनिक थे, याद है हित्ती उरिया। हालांकि तिग्लात-पिलेसर ने जो कल्पना की थी वह स्थायी सेना को मुख्य रूप से गैर असीरियन सैनिकों से युक्त बनाना है। आप जानते हैं दोस्तों, अब तक यह एक आवश्यक बात बन गई थी क्योंकि अश्शूरियों को एक सदी से जिस तरह की क्षति झेलनी पड़ रही थी उसने उनके समाज शास्त्र को पंगु बना दिया होगा। ठीक है, तो अददनेरारी के समय से लेकर तिग्लात-पिलेसर के समय तक लगभग 2 शताब्दियों की समयावधि थी। अब बिल्कुल नहीं, बल्कि लगभग 2 शताब्दियों तक वह अंतिम युद्ध का समय है। इसलिए 2 शताब्दियों से असीरियन लोगों को हताहत कर रहे हैं, और यह एक संस्कृति को कमजोर करने वाला है। मारे गए असीरियन सैनिकों में से प्रत्येक अपने पीछे एक विधवा और संभवतः बच्चे छोड़ गया होगा। उनकी देखभाल कैसे की गई? असीरिया के सामाजिक ताने बाने के बारे में इसका क्या मतलब था? किसी विशिष्ट जानकारी के अभाव में हम जो अनुमान लगाते हैं या 2 शताब्दियों तक हताहत होना प्राचीन असीरियन लोगों के समाज शास्त्र पर कठिन था। इसलिए अब वे हताहतों की घटनाओं को उन सैनिकों तक स्थानांतरित कर सकते हैं जो उनकी सेनाओं में तैनात थे, लेकिन वे असीरियन नहीं हैं। यह बिना किसी छोटे हिस्से के स्पष्ट करता है कि वे इतने वर्षों तक अपनी सेना या अपने साम्राज्य को कायम रखने में इतने सफल क्यों रहे। ठीक है, तो जब धुमा शांत हुआ तो टिग्लथ-पिलेसर स्मारकीय महत्व का एक जनरल था, लेकिन शायद ये नवाचार ही थे जो उसके बाद के सभी राजाओं के लिए सबसे अच्छा योगदान थे। इसलिए जैसे जैसे हम उत्तरी साम्राज्य के अंत की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि शल्मनेसर भी अगला राजा बन जाता है। मिस्र का राजा भी ऐसा ही है, और वह फिलिस्तीन में विद्रोह पैदा करने की साजिश रचता है। महान भविष्यवक्ता यशायाह ने हिजकियाह को ऐसे गठबंधनों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उत्तरी साम्राज्य का राजा होशे उतना बुद्धिमान नहीं था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि होशे अधिक हताश था। होशे ने विद्रोह किया और 725 में शल्मनेसेर ने सोर और सामरिया को घेर लिया। सितंबर 722 में सामरिया गिर गया, यानी और 28,000 लोगों को शहर से निर्वासित कर दिया गया। बाद के राजा सरगोन ने बाद में दावा किया कि उसने शहर पर स्वयं कब्जा कर लिया है, लेकिन बाइबल पाठ के साथ साथ बेबीलोनियाई इतिहास के अनुसार शहर पर वास्तव में शल्मनेसर द्वारा कब्जा कर लिया गया था। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? यहां उत्तरी साम्राज्य का अंत हुआ, 10 जनजातियों की भूमि का नुकसान हुआ और इसके पास बस इतना छोटा कब्र चिन्ह था। 722 यह खत्म हो गया है। 10 जनजातियां हमेशा के लिए गायब हो गई। 10 खोई हुई जनजातियां कभी नहीं मिली। वे बंधुवाई में चले गए और उन्हें निगल लिया गया, और ठीक उसी तरह हमारे पास उत्तरी साम्राज्य का अंत था। सरगोन ने शल्मनेसर वी का अनुसरण किया। सरगोन को हस्तक्षेप के कम 3 प्रमुख क्षेत्रों से विरोध मिला। मैंने एलामाइट हस्तक्षेप का उल्लेख किया था, इसलिए अब हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अश्शूरियों ने गठबंधन द्वारा उन्हें खत्म करने के कुछ प्रयास शुरू कर दिए हैं। सरगोन द्वितीय के शासनकाल के दौरान आप देख सकते हैं कि उसका शासन था कि उसके देश का हिस्सा गहरे हरे रंग में विस्तारित था। तो जैसा कि आप बता सकते हैं, सरगोन द्वितीय के शासनकाल में असीरिया और भी बड़ा हो गया। देखें कि कैसे वह पूरे चाप में इसका विस्तार करता है। तो सरगोन सैन्य रूप से एक बहुत ही सफल राजा था, और इसलिए वह सफल है, और यह आंशिक रूप से इसलिए होता है क्योंकि उसने यहां एलामाइट हस्तक्षेप का विरोध किया है। इसलिए मैंने आपको अपने नोट्स में एलाम पर विजय प्राप्त करने के बारे में बताया था। ड्यूर की लड़ाई में वह एलाम के हुमनिगाश और मर्दुकप्लाइदीना से मिले थे, जिन्हें बाइबल में मेरोडाक बालादान कहा जाता है। लड़ाई के नतीजे सभी 3 प्रतिभागियों से सूचीबद्ध हैं, और खुशी की बात यह है कि कोई भी नहीं हारा। लेकिन यह असीरियन जीत से कुछ कम थी, क्योंकि मेरोडक बालादान अगले 11 वर्षों तक बेबीलोन के सिंहासन पर बना रहा। 708 तक उसने अंततः बेबीलोन पर पुनः कब्जा नहीं कर लिया। इसलिए जब हमने मानचित्र को देखा तो एलामियों ने अश्शूरियों के शासन में हस्तक्षेप किया था, लेकिन सरगोन उन्हें हराने और उड़ाऊ बच्चे बेबीलोन को वापस नियंत्रण में लाने में सफल रहा। पश्चिमी हस्तक्षेप में ड्यूर की लड़ाई के बाद सरगोन को हम्मत के याबिदी के नेतृत्व में विद्रोह का सामना करना पड़ा। दमिश्क, सामरिया, अरपाद, हटारिका और सामरिया सहित कई अन्य शहर राज्य इसमें शामिल होते हैं। सबसे मजबूत सेना गाजा के राजा और मिस्र की सेना के कमांडर की थी। सरगोन इस लड़ाई में सफल रहा, यही कारण है कि जब हम अपने मानचित्र को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सरगोन की शक्ति नीचे तक फैली हुई है, कोई शहर नहीं है। क्या आप देखते हैं कि यहां हरा कहां है? उसके दक्षिण में गाजा के अलावा कोई शहर नहीं है। इसलिए सरगोन गाजा तक तटीय मैदान को जीतने में सक्षम है। तो ये दक्षिण में जबरदस्त जीत है। विजयों की यह श्रृंखला इतनी प्रभावशाली थी कि मैंने आपको अपने नोट्स में इसका उल्लेख किया था। यह जकरयाह 9 में 1 से 5 तक राष्ट्रों की सूची के लिए प्रोटोटाइप के रूप में काम करता प्रतीत हुआ। यह 712 तक नहीं था कि सरगोन को फिर से पश्चिम में आना पड़ा, इस बार अश्दोद के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाएं। बेशक उत्तरी हस्तक्षेप उरारतू था। 719 से 18 में उन्हें अपना ध्यान उरारतू की ओर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। केवल आंशिक रूप से सफल होकर वह 714 में वापस लौटा और इसके सबसे पवित्र शहर मुतबिसिर पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रीय देवता हल्दिया को अपने साथ ले गया। मुश्की के राजा मीता ने उसका विरोध करना जारी रखा, जिसका उल्लेख इजेकील 38 और 39 में किया गया है। इसलिए वास्तव में जब हम मानचित्र को देखते हैं तो सरगोन सभी को तलाक की नहीं बल्कि तलाक की कड़वी गोली दे रहा है, अवसाद की गोली, क्योंकि इस पूरे साम्राज्य की परिधि पर हर जगह इसका विस्तार होता रहता है। यदि आप इन साम्राज्यों की गतिशीलता को समझना चाहते हैं तो यह कुछ इस तरह काम करता है। दर्शकों में से हर किसी ने गुब्बारे को फुलाते हुए देखा है। आप जानते हैं, आप इसे उड़ा सकते हैं और यह बड़ा हो सकता है और यह बड़ा हो सकता है, लेकिन हर गुब्बारे की अपनी सीमाएं होती हैं और जब यह फट जाता है तो बस इतना ही। और बिल्कुल यही असीरियन साम्राज्य के साथ हो रहा है। अभी यह बिल्कुल अजेय दिखता है और यह लगातार बड़ा होता जा रहा है। शेष प्राचीन विश्व के लिए खुशी की बात है कि अब वह समय दूर नहीं है जब यह ढह जाएगा। तो सरगोन एक बहुत ही सफल राजा है और इसलिए उसने अपनी राजधानी को अशूर शहर, एक ऐतिहासिक राजधानी, से कलाक में स्थानांतरित कर दिया। इसे फिर से नीनवे में स्थानांतरित कर दिया। इसे डी उर्शरुकिन में स्थानांतरित कर दिया, जहां से असीरियन कला के कई उदाहरण हैं और निर्माण पाया गया है। जब वह 705 में तबल के विरुद्ध लड़ते हुए मर गया, तब उसने अपने नए महल पर बमुश्किल कब्जा किया था। तबल का उल्लेख यहेजकेल 38 और 39 में किया गया है। बस यहेजकेल 38 और 39 के बारे में बात करने के लिए वहां के सभी राष्ट्रों की सूची में हर अंतिम स्थान पर गोग और मागोग को छोड़कर सभी अंतिम स्थानों का मानचित्र ज्ञात है। गोग और मागोग, पिछली बार जब मैंने गिनती की थी, गोग और मागोग कौन हैं? इसके बारे में 13 या शायद 17 अलग अलग अनुमान थे, लेकिन इजेकील 38 और 39 में सूचीबद्ध अन्य सभी राष्ट्र इजेकील की दुनिया के मानचित्र पर जाने जाते थे। तो इसके साथ सरगोन का शासन समाप्त हो जाता है और उसके बाद सन्हेरीब आता है। सन्हेरीब एक ऐसा नाम है जो आपको उस बात से याद होगा जो मैंने आपको पहले बताया था। सन्हेरीब का एसेयन चंद्रमा देवता सेने है और चेरिब आप पहचान सकते हैं, एक चेरिब है। तो उनके नाम का अर्थ यह है कि चंद्र देवता सेने एक चेरिब या एक धार्मिक पौराणिक व्यक्ति हैं। सन्हेरीब के शासनकाल में कम प्रचार के साथ एक नया जोर दिखाई दिया। वह 24 वर्षों में केवल 8 अभियान चलाते हैं। असीरियन राजा इस प्रकार कार्य नहीं करते थे। उन्होंने और भी बहुत कुछ बनाया, विशेषकर नीनवे में। वह सबसे पहले दक्षिण की ओर बढ़ा और मेरोडाक बालादान को बेबीलोन के सिंहासन से हटा दिया। इसके बाद वह कैसाइट्स और जागरोस के खिलाफ पूर्व की ओर चला गया और मेड्स से श्रद्धांजलि प्राप्त करने का दावा किया। इस सेमेस्टर में हमने पहली बार उनका उल्लेख किया है। हालांकि यह उनका तीसरा कदम है जो बाइबल के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए रुकने के लिए एक अच्छी जगह होगी, क्योंकि दक्षिणी राज्य पर सरगोन के आक्रमण का वर्णन करने और इसे इस टेप पर समाप्त करने में मुझे बहुत समय लगता है। तो हम जो करने जा रहे हैं वह यहाँ रुकना है और फिर पुराने नियम की संपूर्ण घटनाओं में से सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक पर वापस आना है। हिजकिय्याह के शासनकाल में सरगोन ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि हम सरगोन के इस भ्रमित करने वाले अभियान को समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसे ध्यान में रखते हुए हम एक ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। यह पुराने नियम की पृष्ठभूमि पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डॉन फाउलर हैं। यह सत्र 19 इंपीरियल असीरिया है।